एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, इस चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान और आज हम एक काफी दिलचस्प किताब पर बात करेंगे।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। कोशिश रहेगी कि हम इस किताब के गहरे विचारों को आसान भाषा में समझें और देखें कि ये हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ते हैं।
हाँ, आज जो किताब हमने चुनी है वो थोड़ी, आप कह सकते हैं, चुनौती देने वाली है। एलन बदियू की एथिक्स, एन एस्से ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इविल, यानी नीति शास्त्र, बुराई की समझ पर एक निबंध।
बिल्कुल, और ये किताब आज के जमाने में मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नैतिकता, सही गलत, मानवाधिकार, इन सब पर हमारी जो आम सोच है ना,
हाँ,
उस पर सवाल उठाती है। बदियू एक बुनियादी सवाल पूछते हैं, क्या अच्छा होना सिर्फ किसी को दुख न पहुंचाना है या कुछ और भी है?
मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम आजकल नैतिकता मान बैठे हैं वो असल में हमें कुछ बड़ा सोचने या करने से रोक रही हो?
हाँ बिल्कुल, यही पॉइंट है उनका। क्या ये सिर्फ यथास्थिति बनाए रखने का एक तरीका है?
तो चलिए पहले लेखक को थोड़ा जान लेते हैं। एलन बदियू फ्रांस के हैं, काफी जाने माने, पर हाँ थोड़े विवादास्पद भी रहे हैं।
हाँ, उनका प्रोफाइल काफी अनोखा है। वो फिलोसोफर तो है ही, साथ में गणित में भी उनकी गहरी रुचि है और राजनीतिक रूप से भी काफी सक्रिय रहे हैं, खासतौर पर रेडिकल वामपंथ में।
और लुई अल्तुसर जैसे बड़े विचारक के छात्र भी रहे हैं।
बिल्कुल, और यही मेल, मतलब दर्शन, गणित और राजनीति का, उनकी सोच को बहुत अलग बनाता है। देखिए, ज्यादातर लोग नैतिकता को धर्म से जोड़ते हैं या इंसानियत की भलाई से,
हाँ, आमतौर पर तो यही होता है।
पर बदियू ऐसा नहीं करते। वो अपनी नैतिकता की नींव रखते हैं प्लेटो के दर्शन पर, मतलब शाश्वत सत्य के विचार पर, और गणित की मॉडर्न सेट थ्योरी पर।
और गणित और नैतिकता, ये तो थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन लगता
है ना? पर यही चीज उनके नजरिए को एकदम ताजा और कह सकते हैं चौंकाने वाला बनाती है। उनकी और भी बड़ी किताबें हैं, जैसे बीइंग एन इवेंट, जो इस किताब के विचारों की जमीन तैयार करती हैं।
है। अच्छा, तो इस किताब का सार क्या है, मतलब मुख्य विचार क्या है?
बदियों का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आजकल जिस नैतिकता की बहुत बात होती है, जैसे मानव अधिकार, दूसरों का सम्मान करो, किसी को दुख न दो, ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर असल में ये एक तरह की कमजोर और थोड़ी सुस्त बना देने वाली सोच है।
कमजोर कैसे?
वो कहते हैं कि ये सोच हम इंसानों को बस एक एक बेचारा नाजुक प्राणी की तरह देखती है, जिसका सबसे बड़ा मकसद है बस किसी तरह जिंदा रहना, तकलीफों से बचना। वो इसे पीड़ित की नैतिकता जैसा कुछ कहते हैं।
तो फिर इसका विकल्प क्या है?
हाँ, इसके जवाब में बदियू एक अलग, ज्यादा सकारात्मक नैतिकता का प्रस्ताव रखते हैं। वो इसे सत्यों की नैतिकता कहते हैं। ये कोई पहले से बनी बनाई नियमों की लिस्ट नहीं है।
तो फिर ये है क्या?
बदियू के हिसाब से सच्ची नैतिकता तब पैदा होती है जब कोई घटना, इवेंट घटती है। अब ये घटना कोई रोजमर्रा की चीज नहीं है।
अच्छा, मतलब कुछ खास।
हाँ, कुछ ऐसा जो अचानक हो, जिसकी उम्मीद ना हो और जो हमारी सामान्य सोच और जिंदगी के ढर्रे को एकदम से तोड़ दे। कोई बड़ी वैज्ञानिक खोज हो सकती है, कोई राजनीतिक क्रांति, या यहां तक कि किसी से शिद्दत वाला प्यार हो जाना।
ओके,
और फिर नैतिकता क्या है? नैतिकता है उस घटना से जो सच सामने आया है उसके प्रति वफादार रहना, उस पर टिके रहना, उसे आगे बढ़ाना। इसी को बदियू निष्ठा कहते हैं।
और इसी नजरिए से वो बुराई को भी देखते हैं, मतलब बुराई कोई अलग चीज नहीं है।
बिल्कुल, उनके लिए बुराई कोई शैतानी ताकत नहीं है जो बाहर से आती है। बुराई असल में उसी सच को बनाने की प्रक्रिया में हुई गड़बड़ी या नाकामी का नतीजा है।
अच्छा,
जैसे
जैसे
उस सच से मुकर जाना, या किसी झूठे सच को असली बता देना, या फिर किसी एक सच को हर चीज पर थोपने की कोशिश करना, ये सब बुराई के रूप है।
दिलचस्प। चलिए थोड़ा और खोलते हैं इसे। बदियो ये जो कहते हैं कि 20वीं सदी के आखिर में अचानक नैतिकता का शोर बढ़ गया, इसका क्या मतलब है?
हाँ, वो कहते हैं कि ये कोई सच्ची दार्शनिक जागृति नहीं थी। ये ज्यादातर एक एक लक्षण था। जब बड़े बड़े राजनीतिक सपने जैसे कम्युनिज्म वगैरह फेल हो गए, तो जो मौजूदा सिस्टम था, उदार पूंजीवाद, उसको सही ठहराने के लिए नैतिकता और मानवाधिकार का इस्तेमाल होने लगा।
मतलब ये एक तरह का बचाव था।
हाँ बिल्कुल, बदयू मानते हैं कि ये बातें असल में किसी भी बड़े रेडिकल बदलाव के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करती है कि भाई सबसे जरूरी तो मानवाधिकार है, बाकी सब बाद में।
फिर वो एक और बड़े विचार पर आते हैं, दूसरा या अदर। लेविनास जैसे दार्शनिक हैं जो कहते हैं कि नैतिकता शुरू ही दूसरे के प्रति जिम्मेदारी से होती है। बदयू इससे सहमत नहीं है।
हाँ वो इसकी आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि ये दूसरा कौन है, ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट, बहुत धुंधली सी बात है। असल जिंदगी में हम किसी अनजान दूसरे से नहीं मिलते, हम तो अलग अलग कॉन्क्रीट इन तरीकों से लोगों से मिलते हैं।
सही बात है।
बदयू का तर्क है कि सिर्फ दूसरे के सम्मान पर टिकी नैतिकता आखिर में अपने आप से ही प्यार करने का एक तरीका बन जाती है। मतलब मैं अच्छा हूं क्योंकि मैं दूसरे का सम्मान करता हूं।
तो फिर सच्ची नैतिकता कहां मिलती है बदयू को?
दूसरों से अलग होने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ कुछ साझा करने में, किसी चीज में भागीदार होने में। जैसे दो लोग प्यार में हैं या कुछ लोग मिलके किसी राजनीतिक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, वो एक ही घटना या सच से जुड़े होते हैं।
अच्छा,
और उसी जुड़ाव, उसी साझा मकसद के प्रति जो निष्ठा है, वही नैतिकता की बुनियाद बनती है। तो जोर फर्क पर नहीं बल्कि समानता पर है, एक ही सच के प्रति साझा प्रतिबद्धता।
और इसी कड़ी में वो कहते हैं कि हमारी जो मुख्य धारा की नैतिकता है वो असल में निराशावाद है, निहिलिज्म। ये थोड़ा भारी शब्द है।
हाँ है तो, पर उनका मतलब ये है कि ये सोच मानकर चलती है कि दुनिया में असल चीज तो बुराई ही है, अच्छाई क्या है, बस बुराई का न होना। ये इंसान को उसकी कमजोरी, उसकी नश्वरता से पहचानती है। बदयू का शब्द है सफरिंग बीस्ट, यानी एक दुखियारा जानवर जिसकी बस रक्षा करनी है। वो कहते हैं कि ये नजरिया इंसान की असली ताकत को नजरअंदाज करता है।
कौन सी ताकत?
सोचने की, रचने की, दुनिया बदलने की क्षमता। और जब हम इंसान को सिर्फ एक पीड़ित की तरह देखते हैं तो राजनीति भी सिमट कर रह जाती है। वो सिर्फ राहत पहुंचाने या संकट संभालने का काम बन जाती है, किसी बड़े बदलाव का सपना नहीं देखती।
यहां तक तो हुई आलोचना, अब आते हैं उनके अपने प्रस्ताव पर, सत्यों की नैतिकता। इसके कुछ खास शब्द हैं, उन्हें समझना पड़ेगा।
हाँ कोशिश करते हैं। पहला है स्थिति, सिचुएशन। ये बस हमारी रोजमर्रा की दुनिया है, जैसा सब कुछ चल रहा है, नियम कायदे वगैरह।
ठीक है, सामान्य हालात।
फिर आती है घटना, इवेंट। ये उस सामान्य हालात में एक दरार है, कुछ ऐसा जो अचानक होता है, अप्रत्याशित, जिसे आप पुराने नियमों से समझा नहीं सकते।
जैसे कोई क्रांति या कोई बड़ी खोज।
हाँ बिल्कुल, आइंस्टाइन की थ्योरी, फ्रांसीसी क्रांति, या जैसा मैंने कहा प्यार में पढ़ना भी, ये सब घटना हो सकती हैं।
फिर है कर्ता, सब्जेक्ट। ये बड़ा दिलचस्प है। बदयू कहते हैं हम कर्ता पैदा नहीं होते।
हाँ हम बनते हैं।
कैसे बनते हैं?
जब हम किसी घटना का सामना करते हैं, उसे पहचानते हैं और उसके प्रति वफादार रहने का फैसला करते हैं, उस घटना से निकले सच को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में हिस्सा लेकर हम दर्शक नहीं रहते, हम कर्ता बन जाते हैं।
अच्छा, और सत्य क्या है फिर?
सत्य कोई किताब में लिखी चीज नहीं है, ये वो नई सच्चाई है, नई हकीकत है, जिसे लोग मिलकर बनाते हैं, उसी घटना के प्रति निष्ठावान रहकर। हर सच किसी खास घटना से जुड़ा होता है, पर होता वो सबके लिए है, यानी यूनिवर्सल होता है।
और आखिरी निष्ठा, फिडेलिटी।
ये सबसे जरूरी है शायद।
बिल्कुल, यही बदयू की नैतिकता का केंद्र है। निष्ठा का मतलब है उस घटना से निकले सच पर टिके रहना, उसके मुताबिक सोचना, काम करना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। और यहीं से उनका मूल मंत्र आता है, जारी रखो।
बस इतना ही, जारी रखो।
हाँ, सुनने में सरल है पर इसमें बहुत गहराई है। ये लगातार कोशिश करते रहने, हिम्मत ना हारने की नैतिकता है।
तो अगर नैतिकता किसी सच के प्रति निष्ठा है तो बुराई क्या है? आपने कहा था वो अच्छाई की नाकामी है।
हाँ, बदयू तीन तरह की बुराई बताते हैं। पहली है दिखावा आतंक, सिमुलैक्रम टेरियर। ये तब होती है जब कोई चीज या आंदोलन किसी सच्ची घटना और सच की नकल करता है पर उसका आधार झूठा होता है। जैसे
वो नाजीवाद का उदाहरण देते हैं, वहां भी एक नई शुरुआत, नए कर्ता, आर्यन नस्ल बनाने की बात थी, पर ये सब एक झूठे संकीर्ण विचार नस्लीय श्रेष्ठता पर टिका था। ये सबके लिए सच नहीं था और इसका नतीजा होता है आतंक, उस झूठे सच को जबरदस्ती सब पर थोपना।
और दूसरी
है विश्वासघात, बिट्रेयल। ये शायद सबसे आम है। कोई इंसान किसी बड़े मकसद, किसी सच से जुड़ता है, पर फिर मुश्किलें आने पर या अपने निजी फायदे के लिए वो पीछे हट जाता है, हार मान लेता है। ये उस सच के साथ विश्वासघात है।
हाँ, ये तो काफी पहचाना हुआ लगता है। और तीसरी?
तीसरी थोड़ी ज्यादा जटिल है, विनाशत बाही, डिजास्टर। ये तब होती है जब किसी असली सच के मानने वाले इतने जोश में आ जाते हैं कि वो सोचते हैं कि उनका सच ही सब कुछ है। वो उसे जिंदगी के हर पहलू पर लागू करना चाहते हैं।
मतलब एक ही सच से सब कुछ ठीक कर देना चाहेंगे।
तो पर भी बादियों कहते हैं कि कोई भी सच हमेशा अधूरा होता है, वो सब कुछ नहीं समेट सकता। जब आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो नतीजा विनाशकारी होता है। वो कंबोडिया में खमेर रूज का उदाहरण देते हैं, जहां आदर्श समाज बनाने के नाम पर भयानक तबाही हुई।
ये विनाश वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। कई बार लगता है ना कि अच्छे इरादों से शुरू हुई चीजें भी गलत मोड़ ले लेती हैं। शायद यही वजह हो।
हाँ, शायद कि वो अच्छाई को जरूरत से ज्यादा फैलाने की, उसे निरंकुश बनाने की कोशिश करती हैं।
और यही बादियों का वो मंत्र जारी रखो फिर से प्रासंगिक हो जाता है। ये सिर्फ चलते रहने के लिए नहीं, बल्कि हिम्मत, यकीन और कुछ नया रचते रहने के लिए है।
बिल्कुल, ये सिर्फ नुकसान से बचने की नहीं, बल्कि कुछ बनाने की, कुछ सकारात्मक करने की नैतिकता है।
तो चलिए इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकालते हैं। मेरे लिए पहली बड़ी चीज है पीड़ित होने की नैतिकता की आलोचना। आजकल हम बहुत सुनते हैं सबसे जरूरी है किसी को दुख ना पहुंचे, सबकी कमजोरियों का ध्यान रखो। बदयू कहते हैं ये जरूरी है, पर अगर यही सब कुछ है तो हम कभी कुछ बड़ा या नया सोच ही नहीं पाएंगे।
हाँ, ये सोच हमें बस अपनी सुरक्षा में, अपनी कमजोरियों में उलझाए रख सकती है। जैसे हम अक्सर समस्याओं पर तो बहुत बात करते हैं, पर नए समाधान बनाने पर कमजोर देते हैं।
दूसरी बात जो मुझे अहम लगी वो है घटना ही सच का स्रोत है। मतलब जिंदगी में जो असली नई चीजें आती हैं, नई समझ आती है, वो अक्सर तय रास्तों से नहीं बल्कि किसी अप्रत्याशित मोड़ से, किसी घटना से आती है।
हाँ, ये सोचने लायक बात है। क्या हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे पल आए हैं जिन्होंने हमारी सोच को एकदम से बदल दिया हो? शायद वही बदयू की घटना है।
तीसरा, हम कर्ता बनते हैं होते नहीं। ये मुझे बहुत मजबूत विचार लगा। हमारी पहचान तयशुदा नहीं है। हम जो फैसले लेते हैं, जिन चीजों के प्रति वफादार रहते हैं, वही हमें आकार देते हैं। हम अपने एक्शन से बनते हैं।
बिल्कुल। और चौथा, निष्ठा ही असली नैतिक आदेश है। वो जारी रखो जो है, वो सुनने में आसान है पर असल में बहुत मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब है कि जब आप किसी सच, किसी मूल्य या किसी रिश्ते के प्रति समर्पित होते हैं तो असली परीक्षा तब होती है जब मुश्किलें आती हैं। उस वक्त टिके रहना ही नैतिकता है।
हाँ, ये धैर्य और दृढ़ता की बात है, जैसे कोई कलाकार बार बार रिजेक्शन के बाद भी लगा रहता है।
सही। और पांचवां, बुराई अच्छाई से ही पैदा होती है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर बदयुग का कहना है कि बुराई अपने आप में कुछ नहीं, वो या तो झूठी अच्छाई, दिखावा है, या सच्ची अच्छाई को छोड़ देना, विश्वासघात है, या फिर सच्ची अच्छाई को बहुत ज्यादा खींच देना, विनाश है।
हाँ, ये हमें सावधान करता है कि नेक इरादे भी गलत हो सकते हैं।
बिल्कुल। इस किताब में कुछ पंक्तियां या विचार ऐसे हैं जो दिमाग में घूमते रहते हैं। चलिए कुछ पर बात करें। जरूरी नहीं शब्दशः हो, पर उनका भाव पकड़ते हैं।
हाँ, जैसे पहला विचार ये है, आज की नैतिकता इंसान को बस एक बचाने लायक नाजुक चीज समझती है, पर मैं कहता हूं कि हम में जो अमर है वो सच का कर्ता बनने की हमारी काबिलियत है। मतलब अपनी कमजोरियों पर नहीं, अपने रचने की क्षमता पर ध्यान दो।
बिल्कुल। और दूसरा, वो मूल मंत्र, जारी रखो। यही सत्यों की नैतिकता का इकलौता सूत्र है। उस चीज के लायक बने रहो जिसने तुम्हें पकड़ा और तुम्हें कर्ता बनाया। ये याद दिलाता है कि नैतिकता कोई मंजिल नहीं, सफर है। उस पहली प्रेरणा के प्रति ईमानदार बने रहने का साहस है।
तीसरा, बुराई तब होती है जब निजी स्वार्थ सच के रास्ते में आड़े आते हैं। ये सीधे सीधे विश्वासघात वाली बात हो गई, जब अपना फायदा या आराम हमें उस बड़े लक्ष्य से भटका देता है।
और चौथा, कोई एक सबके लिए नैतिकता नहीं होती। नैतिकता हमेशा किसी चीज की होती है। राजनीति की अपनी नैतिकता, प्यार की अपनी, विज्ञान की अपनी, कला की अपनी। मतलब नैतिकता कोई हवा हवाई नियम नहीं है। यह हमेशा किसी ठोस काम, किसी खास स्थिति से जुड़ी होती है।
अब सवाल यह है कि इन भारी विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है?
जैसे निजी रिश्तों में, प्यार में?
बदियों के नजरिए से देखें तो प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं है या कोई लेन देन का सौदा नहीं, ये एक घटना जैसे पहली मुलाकात या प्यार का एहसास के बाद मिलकर बनाया जाने वाला सच है।
तो जब मुश्किल आए तो सवाल ये नहीं कि क्या मैं खुश हूँ?
हाँ, बल्कि सवाल ये हो सकता है कि क्या मैं उस पहली घटना और उस साझा दुनिया के प्रति निष्ठावान हूँ जिसे हमने साथ बनाने का फैसला किया था।
ये रिश्तों को एक अलग गहराई देता है, है ना?
बिल्कुल। और कामकाज या क्रिएटिव लाइफ में वह भी, मान लीजिए कोई कलाकार है या वैज्ञानिक या कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है, उनके लिए घटना क्या हो सकती है? कोई नया आइडिया, कोई खोज, कोई विजन।
हाँ।
तब नैतिक जिम्मेदारी बनती है जारी रखो, उस आइडिया पर टिके रहना, भले ही लोग साथ ना दें, मुश्किलें आएं, पैसा ना हो, खुद पर शक हो, हार मान लेना, आसान रास्ता पकड़ लेना, ये बादियों के हिसाब से विश्वासघात होगा।
और सामाजिक या राजनीतिक कामों में?
वहां भी ये सोच मदद कर सकती है। हम किसी आंदोलन को देख सकते हैं, क्या ये किसी ऐसे सच पर आधारित है जो सबके लिए है, यूनिवर्सल, या सिर्फ एक खास गुट की पहचान पर, सिमुलैक्रम? क्या ये हमें कुछ नया बनाने के लिए कर्ता बनने को कह रहा है या सिर्फ पीड़ित बने रहने को?
ये हमें सिर्फ शिकायत से आगे बढ़कर कुछ करने की प्रेरणा दे सकता है।
हाँ, और आखिर में बुराई को देखने का नजरिया बदल सकता है। ये समझना कि इतिहास की बड़ी बड़ी बुराइयां अक्सर उन लोगों ने की जो खुद को किसी महान अच्छाई का पैरोकार समझते थे, चाहे वो झूठी अच्छाई, दिखावा हो, या सच्ची अच्छाई को हद से ज्यादा खींचना, विनाश, यह हमें आज की दुनिया को ज्यादा बारीकी से समझने में मदद करता है।
मतलब अपने यकीन को लेकर भी थोड़ा सावधान रहना जरूरी है।
बिल्कुल, क्योंकि कोई भी सच शायद पूरी सच्चाई नहीं होता।
तो इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो है, नैतिकता को सिर्फ नुकसान मत पहुंचाओ वाली रक्षात्मक सोच से आगे ले जाना, उसे कुछ रचो, कुछ बनाओ और उस पर टिके रहो वाली सकारात्मक सोच बनाना,
यानी जारी रखो।
हाँ।
और खुद को अपनी कमजोरियों से नहीं बल्कि उन बड़े सच्चाइयों से पहचानना जिनके लिए हम खड़े होना चुनते हैं। और हाँ, मानवाधिकार जैसी बातों पर भी थोड़ा सोचना कि कहीं ये हमें आराम पसंद तो नहीं बना रहे हैं। उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, निष्ठा दिखानी पड़ती है, जबकि बुराई उसी कोशिश की नाकामी या भटकाव से पैदा हो सकती है।
सही कहा। तो नैतिक होना एक आसान काम नहीं, एक लगातार चलने वाला संघर्ष है जिसमें हिम्मत चाहिए। और जाते जाते शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं, आज की दुनिया में हमारे आसपास ऐसी कौन सी घटनाएं हैं, कौन से नए सच उभर रहे हैं जो हमसे निष्ठा मांग रहे हैं, और क्या हम उनकी आवाज सुन पा रहे हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।